शांति। आज का अभी का विषय है देह अभिमानी और देही अभिमानी स्थिति। इस पर प्रकाश डालें इससे पहले आज पूरे विश्व भर में आज का दिन किस रूप में मनाया जा रहा है? अर्थ डे के रूप में, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और दूसरा अक्षय तृतीया के रूप में। तो एक तरफ अगर देखें कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में जब आज का दिन मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है? आज रमजान भी है। थीम क्या है विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। क्या हो गया है पर्यावरण को जो रक्षा की जरूरत पड़ गई? पॉल्यूशन बढ़ गया है और डिफॉरेस्टेशन हो गया है और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। और इसलिए इस पृथ्वी जिसको हम कहेंगे धरती, जिसको कहते हैं धरती माँ, लौकिक में फिल्म में एक गीत आता है धरती मेरी माता पिता आसमान, है ना? ऐसा एक गीत बचपन में सुना करते थे। और सचमुच अगर हम अलौकिक रीति से, ज्ञान की रीति से भी देखें तो हम इस धरती की गोद में आने से पहले कहां थे? कहां थे? परमधाम में। किसके पास थे? वो किधर है परमधाम? आसमान से भी ऊंचा। हाँ, तो बराबर है ना, पिता आसमान, मतलब कि पिता आसमान में है। और वहां से हम आत्माएं झिलमिल झिलमिल करती हुई नीचे आई। और नीचे आकर क्या किया, क्या लेकर आए थे हम जब वहां से उतरे थे पिता के घर से? झिलमिल करती हुई आत्माएं आई थी, क्या लेकर क्या आए थे हम? इस धरती पर जो कुछ है वो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, बल्कि धरती माँ ने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखी थी। हाँ, कल भी बता रहे थे ना, माँ का काम है पिता से मिलवाती है बच्चों को, और माँ का काम है बच्चों की अच्छी से पालना करती है। हाँ, किस बाप का बच्चा है उसकी मुझे पालना करनी है, तो उसने हमारी पालना के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करके रखी कि बच्चा ऊपर से आ रहा है, बाप के पास से माँ के पास आ रहा है। क्योंकि शरीर क्या है, हम इन जनरल क्या बोलते हैं, पांच तत्व का बना है, पर इन जनरल तो बोलते हैं माटी का बना पुतला माटी में मिल जाएगा, फिर उस माटी में तत्व है। तो बहुत सरल भाषा में तो माटी का बना पुतला माटी में मिल जाएगा। तो ये जो माटी का पुतला कौन तैयार करके देता है? ये धरती माँ। तो इसलिए, लेकिन ये धरती माँ जब हम उतरे थे कैसा वातावरण हमारे लिए बना के रखा था? बिल्कुल सात्विक सतो प्रधान, और आज तमो प्रधान हो गया, तामसिक हो गया है। तो जैसे लौकिक रीति से आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के रीति से भी इस दिन का बहुत महत्व है। हम जब भी अध्यात्म के ऊपर बोलते हैं लोगों के सामने तो सीधा यही बात कहते हैं, पहले पोल्यूशन अंदर आया है तभी वो बाहर आया है, गिरावट अंदर आई है तब बाहर आई है। तो जब विश्व पृथ्वी दिवस पृथ्वी के वातावरण की सुरक्षा के लिए मनाया जा रहा है, तो अगर बहुत गहराई से देखें तो दोषी कौन है? दोषी कौन है? हम है। और इसलिए हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है इस धरती माँ की सुरक्षा करना, अर्थात इस वातावरण को जो हमारी ही गलतियों की वजह से सतो प्रधान से तमो प्रधान बन चुका है, अब हमारा ही फर्ज है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वापस हम भी सतो प्रधान बने और पूरा संसार भी सतो प्रधान बने। दूसरी बात, आज क्या है? अक्षय तृतीया। क्या होता है अक्षय माना? जिसका कभी क्षय नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक ये सब कुछ था, ज्ञान मिला ये दो में बट गया, ये बाहर दिखने वाला शरीर और शरीर को चलाने वाली शक्ति जो दिख नहीं रही आत्मा, दो। पता चला जीवन इन दो से बना है, इन दो में कौन क्षय वाला है और कौन अक्षय है? आत्मा अक्षय है और शरीर क्षयवान है। तो सच्चे अर्थों में अगर अक्षय तृतीया मनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दुनिया की रीति से अगर देखें तो अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हैं? हाँ जी, गोल्ड खरीदते हैं, मतलब गोल्ड जैसा बनना है, और दान का बहुत महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत महत्व होता है, लेकिन दान करने के लिए मेरी जेब में कुछ होना चाहिए ना? अच्छी चीजों का दान करेंगे या खराब चीजों का? तो सही अर्थों में अक्षय तृतीया मनाना मतलब मैं अपने आप को इतना भरपूर करूं, इतना भरपूर करूं कि मुझसे सदा दातापन के रीति से सबको मिलता रहे। लेकिन हम देखते हैं कि हम चाहे पतित बन गए हैं, लेकिन जब बाबा आता है, आज की मुरली में था भगवानुवाच बच्चों प्रति, मैं तुम्हें पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, मैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखलाता हूं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुम्हें लिबरेट करने आया हूं, मैं तुम्हें घर चलने के लिए लेने के लिए आया हूं, तुम्हें मेरे पीछे पीछे मच्छरों के सदस्य मुझे फॉलो करते हुए चलना है, लेकिन पहले लिबरेट होना है। किससे लिबरेट होने की आवश्यकता है? हाँ, देह से लिबरेट होना है, देह के संबंधों से लिबरेट होना है, देह के पदार्थों से लिबरेट होना है, और किससे? संस्कारों से। आज की मुरली में संस्कार को लेकर कौन सी बात कही बाबा ने? हाँ, हाँ, वो देवी मैनर्स की क्लास पूरी हो गई अभी। अभी दूसरा टॉपिक लिया है ना, आज की मुरली से ही लिया है। उसमें था सन्यासी भी वासना लेकर जाते हैं, और ब्रैकेट में था संस्कार। वासना माना ही संस्कार, और इसीलिए फिर अगले जन्म में जाते हैं तो फिर से सन्यास लेने का उनमें संस्कार भरा हुआ है, तो फिर से सन्यास लेने की बात उनके मन में आती है। फिर और एक बात जो थी कि कईयों को धारणा नहीं होती है, चाहे कितना भी समझाओ। क्यों क्यों नहीं होती है धारणा? तो क्या कहा था बाबा ने? धारणा नहीं होने का कारण क्या कहा मुरली में? कई जन्मों के अजामिल है, कई जन्मों के अजामिल है। अब मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे, ये जो मुरली में महावाक्य आया कि कईयों को धारणा नहीं होती है चाहे कितना ही समझाओ, क्योंकि कई जन्मों के अजामिल हैं। ये वाली लाइन बाहर वालों के लिए कही है या हमारे लिए कही है? किसके लिए कही? तो कई जन्मों के अजामिल कौन होंगे? हाँ, लगता है। तो अजामिल की स्टोरी अगर जो शास्त्र में बनाई होगी तो किसके लिए बनाई होगी? किसके लिए बनी होगी? हाँ, क्योंकि देखो, जब तक बाबा हमें नहीं मिला था तो बाबा कहते तुम शूद्र थे, और बाबा के बने तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बने। तो क्या अंतर हुआ ब्राह्मण बने माना और यहां शूद्र थे माना? शूद्र थे माना बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन जी रहे थे, और ब्राह्मण बने माना सोल कॉन्शियस वाले जीवन जीना है, ये ज्ञान हुआ। अब जीते कितना है वो अलग बात है। शूद्र माना बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन, और ब्राह्मण माना सोल कॉन्शियस वाली जीवन, लेकिन हम इन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं सारा दिन। है सच्चाई? कोई है जो हाथ उठाकर कहे कि मैं 24 आवर्स सोल कॉन्शियस रहता हूं? मतलब झूला झूल रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि फिसलन ऐसी तैयार हो गई है, थोड़ा सा अटेंशन जाता है और हम बॉडी कॉन्शियस की तरफ फिसल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, शूद्र से हम ब्राह्मण जरूर बने, लेकिन जैसे बाबा ने कहा कई जन्मों के अजामिल है, मतलब कई जन्मों के बॉडी कॉन्शियस वाले संस्कार हमारे भीतर भरे पड़े हैं, और भरे पड़े होने के कारण से अटेंशन अगर नहीं है तो उधर ही फिसल जाते हैं और पता ही नहीं चलता मैं अभी अभी सोल कॉन्शियस थी और अगले ही पल में क्या हो गई हूं, बॉडी कॉन्शियस हो गई हूं। तो अजामिल का अर्थ क्या है? वो आत्मा जो जाकर मिली है किससे? माया से। तो कौन सी वो आत्मा? ज्ञान में चलने के बाद। बाबा ने कहा ना, ऐसे बहुत सजाएं खानी पड़ती है, लेकिन बाबा का बनने के बाद भी अगर, तो उसकी सजाएं और ज्यादा है। तो हम वो आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में चलना आरंभ भी कर दिया, लेकिन चलते चलते फिर से अगर माया से जाके हाथ मिलाते हैं तो उसको ही कहा अजामिल। अजामेल भी बोलते हैं कोई, जिसने जाके माया से मेल मिलाप किया। भट्टी किस लिए है हमारी? महसूसता द्वारा संपूर्णता। अजामिल ने कैसे सदगति को पाया वो कहानी में बताते हैं ना कहानी में, कैसे उसकी सदगति हुई है या नहीं हुई है। कहानी अगर किसी ने सुनी है तो उसमें बताते हैं उसकी सदगति हुई है। कैसे सदगति हुई है उसकी? बेटे का नाम नारायण रखा, और जब मौत सामने आई तो नारायण का नाम उच्चारण किया और भगवत प्राप्ति हो गई। कितना इजी है ना। तो हम व्यर्थ में इतना, कितने साल हुए होंगे ना सबको, हमने हाथ उठाए थे 1 से 5, 5 से 10, वो तो यूं चुटकियों में पार हो गया। हम क्यों नहीं हो रहे हैं? कहानी ऐसी नहीं है। कहानी वहां पर रियलाइजेशन की है कि अजामिल युवा काल तक तो बहुत आज्ञाकारी पुत्र था अपने माता पिता का, वेदों का पठन करता था, विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन एक बार पिता ने उसको वन में जाकर पूजा के लिए कुछ लकड़ी समिधा आदि लाने के लिए कहा, लेकिन सावधानी दी थी गहरे जंगल में प्रवेश नहीं करना। और इंसान का मन जो मना करो वही करेंगे हम। और ये गया और थोड़ा गहरे जंगल में चला गया और वहां उसने देखा कि कोई शूद्र किसी शूद्राणी के साथ संसर्ग किए हुए है। और कई बार हम कहते हैं ना, होश नहीं रहता है हमें, कई बार हम ऐसे कहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि हम बॉडी कॉन्शियस में कब आ जाते हैं। लेकिन कंसर्न की बात है, आप देखो मेरा झूठ किसी को पता नहीं चले, हम कितने कंसर्न होते हैं उस समय, कितना अटेंशन, मतलब होश में होश वाला जीवन है या नहीं है। तो उसको भी लगा, क्योंकि आखिर एक किसका बेटा था, वो ब्राह्मण था, वो भी उसका पिता राजा के पास पुरोहित था, तो पिता ने मना भी किया है, कोई मुझे देख न ले करके छिप छिप के देख रहा था। तो छिप छिप के देखा और आंखों के द्वारा वो दृश्य गया और चिंतन चलना आरंभ हुआ। और फिर दूसरे दिन गया तो और ज्यादा दृश्य देखा और अब मन उसकी तरफ बह गया। इधर पिताजी राजपुरोहित है और इसकी अवस्था खराब हो रही है, तो राजा का भी नाम खराब होगा। तो लोगों ने पुरोहित को उसको कहा कि आप अपने बेटे को समझाओ। पिता ने बेटे को अजामिल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर एक बार जो बाबा कहते हैं ना, कुसंग से बचो, 63 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, 63 जन्मों से हम देह अभिमान वाला जीवन जी रहे हैं और अभी सिर्फ एक जन्म में हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रहे, कोई 24 आवर्स नहीं रहते हैं हम। तो उसका क्या हुआ कि उसको मना करने पर भी मान नहीं रहा था। फिर किसी ने उसके पिता को सजेशन दिया, एक काम करो, इसका जल्दी से विवाह कर डालो, एक पत्नी होकर जिएगा तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो पत्नी आई वो सुशील थी, वो इस प्रकार के, इसके जैसे संस्कार जागे थे उस प्रकार के तो नहीं थे। और फिर पिताजी जो कुछ कह रहे हैं उसका भी मान नहीं रहे हैं वो। पिताजी समझाने के आ गए, पिताजी को ही घर से निकाल दिया। और जब पिताजी को ही घर से निकाल दिया तो बोलने वाला तो कोई ज्यादा रहा नहीं, माँ की तो चलने नहीं दिया। वो जो जिससे शादी करा के दी थी वो उस उल्टा व्यक्ति औरत को भी लेकर आ गया, वैश्या को लेकर आ गया। और उसमें तो, क्योंकि वैश्या तो पेशा होता है ना, पेशेवर व्यक्ति को खुश करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, और उसको खुश करने के लिए पहले तो घर से निकाला पिताजी को, जो घर की धन संपत्ति आदि थी वो भी सब खत्म कर डाला। फिर भी ये रोज रोज, इनको तो रोज खुश करना होता है पेशेवरों को, तो फिर लूटमार करना शुरू किया, हत्याएं करना शुरू करा, डकैती करना शुरू किया, जुए में किसी को गोलमाल करके हराना शुरू किया। ऐसे करते करते बहुत उसकी हालत बिगड़ी और फिर उससे 10 बच्चे भी पैदा किए। उम्र बड़ी, कहते 80 वर्ष के बाद भी बच्चा पैदा किया उसने। और एक बार क्या हुआ कि उस गांव से कुछ संत गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा गांव वालों से, यहां कोई वैष्णव का घर है क्या, कि ताकि वहां जाकर हम थोड़ा सा विश्राम भी कर सके और थोड़ा सा भोजन पान भी कर सके। गांव वालों ने मस्खरी करते हुए, ये जो व्यक्ति ब्राह्मण तो था पहले, ब्राह्मण माना ही विष्णु की पूजा करते ही है, लेकिन अभी तो उसका वो लक्षण नहीं है, पर उनको ऐसे ही बता दिया ये वैष्णव का घर है फलाना। और वो चले गए वहां पे। चले गए तो दिन में घर में था नहीं अजामिल। दिन में जब वो घर में था नहीं तो बाहर से भिक्षाम दही करके इन्होंने आवाज लगाई, पत्नी निकल कर आई और उसने कहा कि पति घर में नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। और उन्होंने कहा कि भोजन आदि के लिए कुछ चाहिए, उन्होंने कहा मैं समिधा दे देती हूँ, आप खुद ही पका के खा लीजिए। पकाया, लेकिन पकाते पकाते संत थे ना, महात्मा थे ना, कुछ तो ऊंची स्थिति है, भाप गए, ये अन्न शुद्ध नहीं है। और इसलिए जब जाते समय सोचा कि जिसके घर का अन्न लिया है और खाया भी है उनको कुछ देके जाना है, और जाते जाते ये नसीहत देकर गए कि बेटा होगा, तब तक वो अजामिल आ भी गया था और जाते जाते सिर्फ ये नसीहत दे गए कि जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना, तो नारायण का नाम जाप करते करते तर जाओगे। और फिर नारायण भी हुआ, वो मतलब हुआ बच्चा, नारायण रखा, बुढ़ापे का समय था और छोटा बच्चा तो बहुत प्यारा होता है, उसमें उसकी आसक्ति बढ़ गई और एक दिन बुखार आदि मतलब मौत बुलाने आ गई। और जब मौत बुलाने आ गई तो कई बार कहते हैं ना, मृत्यु से पहले कईयों को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, डरावने, भयावह, इसको भी ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया। तीन काले काले बड़े बड़े भयानक स्वरूप वाले नाखून, जैसे कि राक्षसों का, यमदूतों का वर्णन होता है, और वो देखकर, और उनके हाथ में फंदा है, इसको फंदा डालने के लिए आए हैं, वो एकदम से भीतर से कांप गया। और कांपने से क्या हुआ, समझो मैं कंप्यूटर में कुछ काम कर रही हूं और सीडी है या एक फोल्डर है जो कई सारे गीत है, उसमें लिस्ट है पूरी, मैं कोई पर्टिकुलर गीत बजाने के लिए कर्सर को वहां लेके जाती हूं, लेकिन मेरा हाथ हिल जाता है तो दूसरे गीत पर क्लिक हो जाएगा, तो मैं गई तो वो क्लिक करने थी लेकिन बज गया दूसरा। ऐसे ही जब उसके सामने मृत्यु के समय वो यमदूत आए हैं और यमदूतों ने जिस भाषा में बोला और जिस प्रकार का उनका रूप आदि देखकर वो भयभीत हुआ था, वो बहुत कांपा, उसका मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। इतना मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि उसकी जो दृश्य देखा ना यमदूतों का, और उसमें भी संख्या बताते कि तीन यमदूत दिखे, और थोड़ी देर में चार विष्णु दूत दिखे, और इन दोनों का आपस में वार्तालाप चल रहा है, और ये वार्तालाप देखा सुना और रियलाइजेशन के दौर से गुजरा। ऐसे नहीं कि नारायण बोला और उसकी मृत्यु हो गई और भगवत धाम चला गया, ऐसा नहीं है, कहानी अधूरी है वो, कि उसमें रियलाइजेशन हुआ है। और क्या रियलाइजेशन हुआ है, तो जो कहा कि पहले तो वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण में इसमें बताया कि चार विष्णु दूत आए, यमदूत तीन आए, क्या होगा इन संख्या का हिसाब किताब, मन वचन कर्म, तीन बातें हैं, तन मन धन, इसी के प्रभाव में हम कर्म कर रहे होते हैं, तो इसी मन वचन कर्म तन मन धन के प्रभाव में आकर जो उसने बुरे कर्म किए हैं, उन बुरे कर्मों की जो सजा है वो उसको सामने दिखाई पड़ रही है। लेकिन मेंटल इम्बैलेंस बिगड़ता है जब बहुत गहरी चोट लगी उसको। तो तो विष्णु दूत भी दिखाई पड़े, मतलब दूसरी फाइल भी ओपन हुई। पहले तो ब्राह्मण था, चलते चलते बिगड़ा ना, तो वो भी फाइलें, चार फाइलें खुल, चार जो विष्णु दूत कोई और नहीं थे। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन के चार स्तंभ कौन से बताए जाते हैं? शुद्ध अन्न और सत संग और दैवी गुणों की धारणा जी, ब्रह्मचर्य। तो लंबे काल तक उसने उसका पालन किया था। तो वो जो कहा ना कि वो भी फाइल उसकी खुल गई, और जो हम रोज मुरलियों में सुन रहे, मतलब हम ही है ना, स्वीकार किया था ना पहले, हमारी ही कहानी है, क्योंकि हमारे लिए ही तो बोला बाबा ने। कई जन्मों के अजामिल होने के कारण धारणा नहीं होती है, चाहे कितना भी समझाओ। तो कई ब्राह्मण जीवन में उसने कई समय तक उसको धारण भी किया। तो वो सारी बातें मुरली की नहीं, चलते चलते हम मुरली के प्रति ढीले हो जाते हैं, बाबा तो रोज रोज वही सुनाता है। नहीं, कई बार हम बोल देते हैं ना, ऐसे बच्चे हैं ना, आखिर बाप के लिए नटखटपन में कुछ भी बोलते हैं हम, बाबा तो रोज रोज वही सुनाता है। तो ऐसे हम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में कभी तो हमारा दौर होता है कि जब हम बहुत अटेंटिव होते, तो वो भी अंदर गया हुआ है। तो वो सारे हम कितनी बार मुरली में सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, बाबा भी बोलते हैं ना गीता का हवाला देते हुए, बाबा तो छोटा सा ही महावाक्य बोलते, पूरा लंबा नहीं बोलते हैं, सिर्फ हवाला देते हैं और उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इधर जो यमदूत का वो नजारा दिख रहा है, जो फंदा लेकर आए हैं और उसको दिख रहे हैं, बाबा भी कहता है जब तुम्हें सजा मिलेगी ना, तुम्हारे किए हुए कर्म सामने आएंगे। कोर्ट में भी जब जज फैसला देता है तो ऐसे नहीं देता है, ये बातें मद्देनजर रखते हुए। तो बाबा भी जो सजा हमारे लिए मुकरर होगी, हमने क्या क्या किया है वो हमारे सामने दिखेगा। तो इधर ये दिख रहा है और इधर जो स्टडी की हुई है वो भी दिख रही है। वहां भी अगर हमें रियलाइजेशन आ जाए तो उत्थान उद्धार संभव है, पर रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये उसका रियलाइजेशन का पीरियड था और वहां उसने समझा मैं कौन से मार्ग पर जा रहा था और जाते जाते मैं कौन से मार्ग पे चल पड़ा कि आज मेरे लिए इतनी बड़ी सजा। लेकिन नहीं नहीं, मैं आज भी इस रास्ते से बदल कर इस रास्ते पर चला जाऊं, भले ना मैंने कितने भी पाप कर डाले हैं, लेकिन भगवान के पास वो ताकत है कि मैं अगर अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता हूं, रियलाइज कर लेता हूं, कबूल कर लेता हूं और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता हूं भगवान से, तो भगवान की मदद मुझे जरूर मिलेगी और भगवान जो मुझे बनाना चाहता है वैसे मैं फिर से बन सकता हूं। लेकिन लोगों ने कह दिया कि वो मर गया, वो मरा नहीं था। जब भी कभी गहरी चोट लगती है ना, देखो मेरे को अगर आके किसी ने हथौड़ा मार दिया हल्के से, थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से, और जोर से, सीमा से जब पार हो जाएगा आवाज भी नहीं निकलने वाली है। होता है ऐसा, सीमा से जब पार हो जाती है चोट तब आवाज भी निकलना बंद हो जाता है। तो वो मरा नहीं था उस समय कि नारायण बोला और मर गया, परंतु वो उस स्थिति में पहुंच गया, इतना भयभीत, इतना कांप गया, तो बाहर से जैसे कि सुन्न हो गया है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसमें क्या होता है, क्लिनिकली डेड डिक्लेयर हो गया है, लेकिन फिर कहां से पैदा आ गया, फिर कहां से आया, क्लिनिकली तो डेड बोल दिया गया ना उसको, फिर कहां से जीवंत होके आता है। तो वो एक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, और अक्सर करके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में ऐसे ही बताया जाता है कि जीवन की रील उनके सामने आई। पहले तो बताते कि काली, एक बहुत घनी काली टनल थी, उसमें से मैं गुजर रहा था, फिर बहुत आगे जाने के बाद एक बहुत चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया, जिस प्रकाश की किरणें मानो मेरे तरफ अनकंडीशनल लव बरसा रही थी, और फिर मेरे जीवन की सारी फिल्म मेरे सामने खुलकर आई, और जो सीन खुलकर आई वहां कुछ रियलाइजेशन हुआ कि अब अगर मुझे धरती पर पुनः जीने का अवसर मिलेगा, ऐसी वाली जीवन में कदापि नहीं जीऊंगा, अभी मेरा जीवन बदला हुआ होगा। और ये रियलाइजेशन के बाद, थोड़े समय के बाद, जिसको डेड डिक्लेयर किया था, ये हालत से वो अजामिल गुजरा था, लेकिन रियलाइजेशन लेकर आया, अब मैंने जो पहले मेरा मार्ग था, वापस मुझे उसी मार्ग पर चलना है, ये मेरे पुण्य कर्म जो संचित थे वही मुझे बचाने आ गए। पाप कर्म सजा देने आए, लेकिन पुण्य कर्म फिर बचाने भी आ गए। तो अभी भी वक्त है हमारे पास, बहुत करीब जा रहे हैं हम एग्जामिनेशन डे के पास, बहुत करीब। पहले ही बता दिया बाबा ने, साकार भी रिवाइज करा रहे हैं, अव्यक्त भी रिवाइज करा रहे हैं, नया पढ़ाना बंद कर दिया है, सिलेबस पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी पहला लेसन, देह अभिमानी से उठकर देही अभिमानी तक हम पहुंचे, कितने झूले खा रहे हैं हम, कितने झूले चल रहे हैं हमारे, मैक्सिमम टाइम किस तरफ होंगे हम, हाँ, देह अभिमान। तो समय बहुत कम है, उसकी ये रियलाइजेशन के लिए भट्टिया है, और ये रियलाइजेशन एकांत के बिना नहीं हो सकती है, और एकांत के बिना इतना जो बाबा ने कहा ना कि तू मेरे को समर्पित हो जा तो मैं तुझे तेरे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, वो भी एकांत के बिना संभव नहीं है। दुनिया में साइंस ने बहुत प्रगति की है, कई सारी ऐसी मशीनें बनाई हैं कि आप करंट मतलब चालू करो, कचरा सारा साफ है ना, ऐसी मशीनें, कचरा वो अपने भीतर खींच लेती है, लेकिन उतना पावरफुल मशीन, और वो मशीन जहां कचरा है वहां ना, कि बहुत दूर मशीन होगी और कचरा बहुत दूर होगा तो होगा, जहां कचरा है वहां मशीन लानी पड़ेगी ना, तो कचरा किस में है अभी, आत्मा में है। संस्कार बताए ना, दोनों फाइलें अभी हमारे पास, दोनों फाइलें हैं। जब देहाभिमान, पहले हम जब उतरे थे तो कौन सी स्थिति में उतरे थे, देही अभिमानी। कल मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था संस्कारों पर, क्या पूछा था किसने संस्कारों पर क्वेश्चन, कौन है वो, क्या प्रश्न पूछा था? जो अभी संस्कार है वो, थोड़ा उठ के बोलो, चेंज हो जाते हैं क्या? तो हमने उनको यही कहा था, हम कल क्लास में सुना देंगे आपको। तो जब हम आए थे हम देही अभिमानी, और अभी संगम पर भी देही अभिमानी का पुरुषार्थ, दोनों में कुछ अंतर है? सत्युग की देही अभिमानी स्थिति और अभी की देही अभिमानी स्थिति में अंतर क्या है? वहां पे देही अभिमानी की स्थिति नेचुरल है, यहां पर पुरुषार्थ किया जा रहा है। वहां वाली देही अभिमानी स्थिति धीरे धीरे गिरती कला की ओर जा रही है, और यहां वाली चढ़ती कला के लिए है ना? कैसे गिरती कला वाली है वो, और यहां कैसे चढ़ती कला वाली है? बचपन में हम सभी ने लट्टू खेला है, लट्टू भौरा बोलते हैं, एक हाथ में भौरा पकड़ते एक हाथ में रस्सी, और फिर वो रस्सी उस भौरे पर लपेटी जाती है लट्टू पर, और उसको चलाया जाता है। जो व्यक्ति जितना एक्सपर्ट होता है उस अनुसार वो भौरा चला पाता है। समझो एक एक्सपर्ट व्यक्ति चला रहा है, तो जब एक्सपर्ट व्यक्ति चलाएगा भौरा, तो जैसे ही वो यूं फेंकेगा ना, तो भौरे की स्पीड इतनी ज्यादा होती है आरंभ में, कि वो इतनी ज्यादा होने के कारण वो स्थिर दिखता है। स्थिर दिखता है, चल भी रहा है लेकिन लगता क्या है, वो स्थिर है। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो फिर वो पता चलता है कि वो अभी स्थिर नहीं, थोड़ा सा उसका महसूस होता है कि घूम रहा है। फिर और समय आगे बढ़ता है तो महसूस होता है अभी लड़खड़ा रहा है, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर पड़ता है। लेकिन वो स्टेज आने के लिए, एक छोटा बच्चा जब किसी को देखता है तो छोटा बच्चा तो हर चीज कॉपी करके ही सीखता है, तो वो भी उठाता है लट्टू, अंकल है भैया है जो भी है, भैया भैया मेरे को भी बताओ ना, फिर वो भी उठाएगा ऐसा बांधेगा करेगा और फेंकेगा, लेकिन उसका वैसे नहीं चलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, करते जाता करते जाता करते जाता, और एक दिन वो भी एक्सपर्ट हो जाता है। तो अभी वाली देही अभिमानी स्थिति वो हम छोटे बच्चे की तरह अपने प्रयासों में थकना नहीं है, विश्वास रखना है मैं अवश्य ही देही अभिमानी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करूंगा, लेकिन मुझे अपने प्रयासों को जारी रखना है। और यही प्रयास जो जारी रखेंगे, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे, सत्युग में आएंगे, लट्टू यूं फेंकेंगे और चलेगा अपने आप, चलेगा अपने आप। तो मुरली में बाबा ने आज ये भी कहा, सत्युग में तो कोई विकार की बातें होती नहीं है, त्रेता में तो कोई पति थोड़े ही है जो मुझे पावन बनाने की जरूरत है। तो सत्युग में हमारे कर्म कैसे थे, अकर्म थे, मतलब अकर्म थे मतलब आत्मा इन दो युगों में पतित नहीं बनी, अस्वच्छ नहीं बनी। उसको सरल अगर करें, ये रुमाल है, कई बार आजकल जब हम एसी में बैठते हैं ना तो कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन बिना एसी वाले कमरे में बैठे या समझो गाड़ी से भी बिना एसी वाले में जाएं, और एक व्यक्ति एसी गाड़ी से उतरे एक घंटे के बाद और एक व्यक्ति बिना एसी वाले में, खिड़की खुली थी, दोनों के कपड़ों को जब देखेंगे कुछ अंतर महसूस होगा, क्या महसूस होगा? एसी वाले का जैसे कि अभी धुला हुआ ही पहना हुआ है, और नॉन एसी वाले का थोड़ा थोड़ा उसमें धूल मिट्टी आ गई है। तो तो हम जब सतयुग में होते हैं, हम जब त्रेता में होते हैं, हमारे जो कर्म है, हमने कर्म करना आरंभ किया, लेकिन हम क्या लेके उतरे थे बोलो, क्या लेकर उतरे थे हम? ओरिजिनल संस्कार लेके उतरे थे ना, ओरिजिनल संस्कार, जो सात संस्कार बताते हैं, सात संस्कार शांति प्रेम खुशी जो सबको पता है, वो हम क्या कर रहे थे? रेडिएट कर रहे थे, कर्म किए जा रहे थे, परंतु कौन से भान में? वो हमारा जो ओरिजिनल कलर था, जो वाइब्रेशन था, वो रेडिएट करते हुए। लेकिन कहा कि लट्टू जाके फिर क्या हो गया, लड़खड़ाते गिर गया, तो त्रेता के एंड में गिर गया। तो फिर द्वापर से क्या शुरू हुआ? अब जो कर्म कर रहे हैं, हम पहले दिन के लेसन में सिखाते हैं, आत्मा का लेसन में मन बुद्धि संस्कार को हम स्पष्ट करते हैं। संस्कारों के लिए क्या बताते हैं कि आत्मा जो भी कर्म करेगी, उस कर्म की छाप आत्मा पर पड़ती है और वही फिर संस्कार का रूप लेते हैं। तो कर्म रूपी रज कहते संस्कार को दूसरी भाषा में, जैसे कपड़े पर तो धूल मिट्टी चढ़ी ना, तभी हमने कहा मैला, तो आत्मा के ऊपर कौन सा मैलापन चढ़ता है? कर्म रूपी रज, क्योंकि कर्म किया तो छाप पड़ी ना संस्कार की, तो ये आत्मा के ऊपर छाप पड़ती जाती है। और इसलिए हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है प्रेम के, खुशी के, आनंद के, उसके ऊपर जैसे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आवरण चढ़ता जा रहा है, और इसलिए उसमें से जो निकल रहा था, प्रकाश की किरणें कहो, प्रेम के वाइब्रेशन कहो, उसकी इंटेंसिटी जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। इसको अगर एक एग्जांपल से सरल करूं तो एक लैंप है, बल्ब है, बल्ब जब हम जलाते हैं, प्लग स्विच बटन चालू करते हैं, तो क्या जलता है? बल्ब में एक फिलामेंट होता है, कांच की कवरिंग होती है, तो जब हम बटन चालू करते हैं तो कहते बल्ब जल गया, क्या जला उसमें, प्रकाशित कौन हुआ, फिलामेंट में प्रकाश आया या कांच में आया? फिलामेंट में आया। फिलामेंट का प्रकाश, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, ट्रैवल करना, तो वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो रास्ते में कांच आया, लेकिन कांच पारदर्शी है तो उसको भेद कर आगे चला गया। लेकिन कांच की मैं अभी सफाई नहीं करती हूं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे दिन के ऊपर दिन बीतते गए, साफ सफाई कुछ की नहीं, तो उसके ऊपर भी क्या चढ़ती जा रही है, धूल मिट्टी चढ़ती जा रही है। और अगर ये वाला बल्ब खास करके किचन में वहां लगा हो जहां खूब पकोड़े तले जा रहे हैं, सीटियां बज रही है, तो उसमें चिकनाहट आदि सब लग के चिपचिपा हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम, क्या हो गया, लाइट क्यों नहीं है किचन में, बटन चालू किया फिर भी लाइट जितनी होनी चाहिए उतनी महसूस नहीं होती है, और फिर ध्यान जाता है हुआ क्या है बल्ब को। कई बार तो हमने बहुत नजरअंदाज किया है तो लाइट ही आना बंद हो जाती है, मतलब अभी अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, चलो अभी किचन में काम करना है, बटन चालू किया, रोशनी नहीं आई, लाइट चली गई क्या, अभी तो ड्राइंग रूम में फिर से जाके आती हूँ और देखती हूँ लाइट चालू है, फिर इधर क्या हुआ, तो उसको क्या हुआ, चढ़ते हैं उसको हाथ लगाने जाते हैं तुम, और जो चिपचिपाहट मेरे हाथ में लगी उतना हिस्सा वहां से साफ हुआ, तो वहां से दिखता है लाइट दिख रही है, और तब समझ में आता है थोड़ा कपड़ा तो दो, और पूरा पहुंच लेते हैं तो प्रकाश दिखता है। तो आपको क्या लगता है, आत्मा की शांति कम हो गई है, पवित्रता कम हो गई है, या उसके ऊपर आवरण चढ़ा है? तभी तो बाबा कहते हैं हम इतने पतित बन गए हैं, उसके बाद भी बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा हो। इतने अशांत हो गए फिर भी बाबा कहते हैं तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। कहता है नहीं कहता है? कई बार नए नए भाई बहने कहते बहन जी आप हमें कहती हो शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं इतना अशांत हूं फिर भी अपने आप को कहूं शांत स्वरूप, तो क्या मैं अपने आप के साथ चीटिंग नहीं कर रहा हूं? लगता है ना, मैं तो अशांति फील कर रही हूं अंदर, और आप मुझे कह रहे बहन जी आप शांत स्वरूप आत्मा हो, तो लगेगा ना चीटिंग। पर चीटिंग नहीं है, वास्तव में अंदर में फिलामेंट को कुछ नहीं हुआ है, बाहर पूरा गंदा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा और सरल कर दूं, क्योंकि योग को बढ़ाना है, हमारा पूरा फोकस उस पे है, योग तपस्या भट्टी उसी के लिए है। लेकिन जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना ज्यादा फिर मन लगेगा उसमें। सेवन डेज कोर्स के ही अंदर, तभी कहा ना सेवन डेज कोर्स वाली ही बातें उठाएंगे हम, जो सुना हुआ ज्ञान है उसी को सुनेंगे, घोटना है ना हमको। सेवन डेज कोर्स के अंदर हमारा एक जो दिखाते हैं योग वाला चित्र, कॉन्वेक्स लेंस वाला भी एक हिस्सा होता है नहीं, तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जैसे नीचे रखी कागज कहो तीली जल जाती है, वो उदाहरण देके ऐसे ही आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो वो किरणें आत्मा पर पड़ के उसके अंदर के विकर्मों का विनाश करती है। अब तीन चीजें होती है, एक होता है मल, एक होता है विक्षेप, और एक होता है आवरण। इसको सरल करूं, समझो मेरे हाथ में वो लेंस पकड़ा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा हुआ है, और किरणें सूर्य की पड़ रही है, लेकिन वो जो कांच है ना लेंस का, वो बहुत ऐसा ही वाला है जो चिकना हो गया है, धूल मिट्टी चढ़ गई है। तो किरणें मैं कितनी भी फोकस कर डालूं, पीछे रखा कागज जलेगा नहीं? जलेगा। कांच को साफ करना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं कहूं कि ऐसे लेंस तो है नहीं है, और मैं सूर्य के सामने रखती हूं और उसके फोकल पॉइंट पर किरणों को केंद्रित करती हूं, कांच साफ होना भी बहुत जरूरी है। चलो मैंने कांच साफ करा, लेकिन मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, किरणें केंद्रित होगी ठीक से? नहीं होगी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब शरीर से अगर मैं कमजोर हूं तो एक स्थान पर मैं ठीक से नहीं बैठ सकती, बार बार इधर उधर होती रहूंगी। ऐसे ही मन हिलता है मतलब मनोबल कम है, तो मन की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और तीसरा होता है कि कांच साफ भी किया समझो, हिल भी नहीं रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक काला कपड़ा किसी ने चढ़ा दिया है, तो भी किरणें केंद्रित हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो ये तीन चीजें आत्मा के ऊपर भी है। अनेक जन्मों का देह अभिमान के वश किए हुए कर्म आत्मा के ऊपर, कर्म रज कहो संस्कार कहो, उसको गंदा किए हुए हैं। या यूं कहे कि ये जो रुमाल है ये अगर साफ है तो इसका व्हाइट और ऑरेंज कलर दिख रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर खूब धूल मिट्टी आदि सब चढ़ जाए, इसका व्हाइट और ऑरेंज कलर दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर आज हमारा सात संस्कार हमारे हैं और पद फिर भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं, तो कारण क्या है? कर्मों की रज उसके ऊपर चढ़ी है। आप सुबह नहा धो के जब बाहर जाते हैं ना अपने व्यवसाय में या कहीं पर भी, फिर कहा ना, दिन भर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी पसीना होता है, शाम को जब घर आते तो पहला काम क्या करते हैं? हाथ मुंह धो लेते हैं। हाथ मुंह धोते ही क्या होता है, जो पहले धूल मिट्टी चढ़ी थी ना, उसके कारण ही कभी इधर खुजली हो रही है, कभी इधर खुजली हो रही है, कभी इधर खुजली हो रही है। लेकिन जैसे ही हाथ मुंह धो लिया, स्नान कर लिया, वो मिट्टी रिलीज कर ली, तो जो मेरा इधर उधर उधर जो इरिटेशन हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हम जो कहते हैं योग में बैठते हैं, पता नहीं बहन जी कौन सी बातें उठ के आ जाती है। तो कौन सी बातें उठ के आती है, ये चढ़ा हुआ मली तो उठ के आता है, पॉप अप होता है बार बार। तो अभी भी मैं आने से पहले एक बहन ने मुझे कहा कि बाबा को पत्र लिखना क्यों जरूरी है, क्यों लिखना जरूरी है पत्र लिखना। तो हमने उनको कहा, देखो कोई चीज मैंने खा ली है जो मेरे शरीर के लिए, शरीर समझता है फॉरेन मटेरियल है, तो वो उसको क्या करेगा, फेंकने की कोशिश में लगेगा और उस फेंक मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। और चूंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको फेंकने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरे अंदर में क्या क्रिएट कर दी, बेचैनी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मुझे, जब से मैंने वो खाया है ना बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। और ऐसी बेचैनी झेलते झेलते हम क्या बोलते हैं, मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, पर उल्टी आ नहीं रही है। लेकिन फिर एक समय आता है उल्टी आ भी जाती है, और उल्टी आ जाने के बाद अभी अच्छा लग रहा है, हालांकि एनर्जी ड्रेन हुई है, थकावट भी लग रही है, परंतु ये जो बेचैनी थी ना, उस बेचैनी से राहत जरूर मिली है। ऐसे ही ये इतने सारे संस्कार जो मेरी आत्मा के अनुकूल वाले नहीं है, मेरे सात संस्कार जो ओरिजिनल है उसके अपोजिट वाले हैं। तो जैसे इस शरीर को भी एक प्रोग्रामिंग मिली हुई है कि जो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है तुम उसको निकाल के फेंकने की कोशिश करना, उसी चक्कर में बुखार आता है, उसी चक्कर में उल्टी होती है, उसी चक्कर में डायरिया आता है। शरीर लड़ाई करता है कि ये फॉरेन मटेरियल है, इसलिए यहां पर उसको जड़े जमाने नहीं देना है। ऐसे ही आत्मा की भी प्रोग्रामिंग है जिसको हम चित्त कहते हैं। आत्मा जब पहली बार संसार में आती है, चित्त पर वो सेवन संस्कार्स की प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाती है, और इस सेवन संस्कार्स के अतिरिक्त अपोजिट वाले अगर संस्कार यहां पर आए, बेचैनी खड़ी कर देना। यही होती है हमारी बेचैनी। तो जो बीच बीच में बेचैनी आ रही है, मतलब कुछ तो ऐसा है, और वो सारा लिख लिख कर बाबा के सामने रखो। जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है उसको कॉन्शियस माइंड में लेकर आओ और बाबा को दे दो। कई बार आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे कई बार पास्ट लाइफ का बताते हैं, अपनी माँ को अपने बाप को जिद करेंगे, मेरी माँ उधर है वहां लेके चलो, मेरी पत्नी उधर है। बच्चे माँ बाप तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई उनको सुझाव देता है एक बार लेके चले जाओ, और लेके चले जाते हैं, और उसको जो वहां जाके कहना था कह देता है, और उसके बाद यही बच्चा जो वहां जाने के लिए जिद कर रहा था अब वहां से वापस लौटने के लिए जिद कर रहा है। सुनी है ऐसी कहानियां, क्योंकि जो अंदर में उभर उभर के आ रहा था वो उसको बेचैन कर रहा था, और जो आ रहा था वो कर लिया। और इसीलिए एकांत में बैठो, बार बार वही वही ज्ञान क्यों, पर्दा भी चढ़ा है ना, तीन चीजें कही मैंने, एक है मल चढ़ा हुआ है और वही मल मुझे स्थिर नहीं दे रहा, धूल मिट्टी पसीना, कभी इधर खुजली कभी इधर खुजली। तो तो हम एक बोलते हैं डर्टी माइंड, दूसरा है मंकी माइंड और तीसरा है अज्ञानी माइंड। और इसीलिए ज्ञान को, वही वाले ज्ञान को बार बार रिपीट करो, तब जाके वो जो अज्ञान का पर्दा है ना, अज्ञान का पर्दा माना क्या, बहुत समय से मैं जो हूं नहीं वो मैं अपने आप को मानकर चली हूं। मैं कौन हूं जो मिरर में दिखता है, हूं तो आत्मा ना, लेकिन 63 जन्मों से जो मैं नहीं हूं वो मैं मान के चली हूं, वो आवरण चढ़ा हुआ है। और इसीलिए जो मैं हूं उसकी स्मृति बार बार निरंतर, जो चीज निरंतर हो जाएगी वो चीज सहज हो जाएगी, और जो चीज सहज हो जाएगी वो फिर मेरे स्वरूप का दर्शन करा देगी। क्या है मेरा असली स्वरूप? क्या है मेरा असली स्वरूप? चमकती हुई ज्योति, शांत स्वरूप अर्थात अशांति से रहित, प्रेम स्वरूप अर्थात घृणा से रहित, शक्ति स्वरूप अर्थात कमजोरी से रहित। लेकिन अभी हूं क्या रहित उससे? तो ये अशांति जो चढ़ी है, घृणा जो चढ़ी है, मेरे स्वरूप का मुझे दर्शन नहीं करने दे रही है। लेकिन बाबा ने जो मुझे बताया है उसके ज्ञान के आधार से मैं उस दृश्य को देखूं, और जो मेरे जीवन में वो जो वास्तविक स्वरूप है उसके अलावा जो अशांति उठ रही है, कभी नफरत आ रही है, कभी चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये है मेरा रियलाइजेशन। ये नहीं होना चाहिए पर है मेरे पास, ये नहीं होना चाहिए पर है मेरे पास, मैं रियलाइज करके बाबा को सौंपूं। और जब उसको मैं सौंप दूंगी और उसके साथ बैठकर कनेक्शन के साथ एकांत में चली जाऊं, वहां पे फिर एक बार सौंप देते हैं ना, जब समर्पण करते हैं निश्चिंत हो जाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चलानी है, जो कुछ करना है उसको करना है। तब जाके रियली जो कॉन्वेक्स लेंस की बात बताई, कांच भी साफ, हिलना डुलना भी बंद, उसके ऊपर का काला कपड़ा भी निकल गया, तो सूर्य की किरणें केंद्रित होके इधर वाले कचरे को कहो, माचिस की तीली को कहो, जो भी है उसको जला देगी। तो ये जब इतना समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं बाबा को, तब जाके हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जैसे ही विकर्म विनाश होंगे तो जो मैं हूं वैसी ही मैं अपने आप को न सिर्फ देखना आरंभ करूंगी, लेकिन मेरे से अपने आप लालटेन के कांच को साफ कर लो, जैसे बल्ब का बताया, कांच को साफ कर लो, उसकी किरणें तो बाहर आने के लिए तैयार थी, आपके धूल मिट्टी ने उसको रोक के रखा हुआ था। तो चलते फिरते स्वतः स्वतः हमारे से विश्व की सेवा भी होती रहेगी। तो स्वपुरुषार्थ भी, स्व सेवा भी और विश्व सेवा भी स्वतः होती रहेगी। और यही वक्त की मांग है, यही समय की पुकार है, यही सही मायनों में विश्व पृथ्वी दिवस मनाना होगा। तब हमारे पृथ्वी का वातावरण सतो प्रधान होगा और हम आत्मा शुद्ध होकर ऊपर जाएंगे। अक्षय तृतीया बोला ना, बाकी तो सब यहां छोड़ के चले जाएंगे और आत्मा जिसका कभी क्षय नहीं होता है ऊपर जाएंगे और फिर पुनः नीचे आएंगे हमारे लिए धरती माँ वेलकम करने के लिए तैयार होगी। ओम शांति।
Thank you.